ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने उभरते भारत की भावना को प्रतिबिंबित किया है और पूरे विश्व ने देश की शक्ति को देखा है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता भारत की विशेषता है, जिसे हाल ही में संपन्न महाकुंभ के दौरान अनुभव किया गया। महाकुंभ पर आज लोकसभा में बयान देते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब पूरा विश्व चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है, तो इस एकता का भव्य प्रदर्शन देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने विविधता में एकता की इस विशेषता को समृद्ध करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, ये हम हमेशा कहते आए हैं, ये हमने हमेशा महसूस किया है और इसी के विराट रूप का अनुभव हमने प्रयागराज महाकुंभ में किया है। हमारा दायित्व है कि अनेकता में एकता की इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहें।
जल संरक्षण के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई नदियां हैं और उनमें से कुछ खतरे में हैं। उन्होंने महाकुंभ से प्रेरणा लेते हुए नदी उत्सव का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नई पीढ़ी को जल संरक्षण का महत्व सिखाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने निष्पक्ष और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज रायसीना डायलॉग के एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मजबूत वैश्विक व्यवस्था की अनुपस्थिति न केवल शक्तिशाली देशों को लाभ पहुंचाती है, बल्कि छोटे देशों को जोखिम उठाने और स्थापित मानदंडों को चुनौती देने में सक्षम बनाती है। डॉ जयशंकर ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लेख करते हुए कश्मीर पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को लेकर भारत के अनुभव बताए। उन्होंने इस मुद्दे से निपटने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की आलोचना की और ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों की भूमिका पर भी सवाल उठाया। विदेश मंत्री ने कहा कि शुरुआत में पाकिस्तान के हमले को स्वीकार करने के बजाय इसे विवाद के रूप में पेश किया गया था। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने रायसीना डायलॉग में निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। आज रायसीना डायलॉग में अपने संबोधन में सुश्री गबार्ड ने पिछले कुछ दिनों में अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत को उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप और श्री मोदी के संयुक्त वक्तव्य से उत्पन्न गति को आगे बढ़ाना बहुत ही रचनात्मक रहा। महाराष्ट्र में नागपुर के महाल इलाके में कल शाम दो गुटों के बीच तनाव पैदा हो गया। धार्मिक प्रतीकों की कथित तौर पर तोड़फोड़ की अफवाहों के बाद दो समूहों के बीच सांप्रदायिक तनाव के कारण पथराव और वाहनों में आग लगाने की घटनाएं हुई। देर रात नागपुर के दूसरे हिस्सों में भी कुछ जगहों पर उग्र भीड़ ने गाड़ियों में आग लगा दी और घरों को नुकसान पहुंचाया। शहर के कुछ स्थानों पर लोगों के इकट्ठा होने को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगा दी गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने तथा शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नागपुर हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करेगी। आज संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति से बेहतर तरीके से निपट रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विधायकों को प्रभावी जनप्रतिनिधि बनने के लिए उन्हें संविधान के प्रावधानों के साथ साथ सदन के नियमों और प्रक्रियाओं की व्यापक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आज नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विधायकों को सदन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और गतिरोध से बचना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज नई दिल्ली में गृह मंत्रालय और विधायी विभाग के सचिवों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ बैठक करेंगे। बैठक में आधार पहचान संख्या को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने पर चर्चा होगी। गजा पट्टी पर इसराइल के ताजा हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 200 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये हमला इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम वार्ता के जनवरी में विफल होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।